एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक अहम किताब पर बात करने वाले हैं। हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड, वन मैन्स लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस। इसे लिखा है रॉबर्ट सैमुअल्स और टोलुसे ओलारो नेपा ने।
जी, और ये किताब जिसे 2023 का पुलित्जर पुरस्कार भी मिला, ये सिर्फ जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बारे में नहीं है, ये उनके पूरे 46 साल के जीवन को, उसकी जटिलताओं को समझने की गहरी कोशिश है।
बिल्कुल, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड, जिनका नाम 2020 में पूरी दुनिया ने सुना, वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं थे, वो एक इंसान थे। जॉर्ज पेरी फ्लॉयड जूनियर एक पिता, एक बेटे, भाई, दोस्त,
हाँ, और एक एथलीट भी, संगीत से भी जुड़े थे, लोगों के मेंटर भी रहे। ये किताब हमें उस इंसान से मिलवाती है जो उस दुखद घटना के पीछे था, उनके सपने, उनके संघर्ष और वो सामाजिक और प्रणालीगत ताकतें जिन्होंने उनकी जिंदगी को, आप कह सकते हैं, एक तरह से मोड़ा।
और इसीलिए ये जानना जरूरी है, अक्सर बड़ी घटनाओं में इंसान की कहानी कहीं खो जाती है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने दुनिया को हिला दिया, पर क्यों? इसका जवाब शायद उन 9 मिनट 29 सेकंड से कहीं ज्यादा गहरा है, वो उनके 46 साल के जीवन में छुपा है।
सही कहा, उनकी कहानी में हमें अमेरिकी समाज की, खासकर अश्वेत समुदाय के अनुभवों की एक झलक मिलती है। तो चलिए उनके जीवन के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
किताब की शुरुआत उनके जन्म से भी पहले उनके परिवार के इतिहास से होती है, उनके परदादा हिलेरी थॉमस स्टुअर्ट की कहानी। ये तो कमाल की है, गुलामी से आजाद होकर 500 एकड़ जमीन खरीदना।
जी, उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, ये एक तरह से पीढ़ीगत उम्मीद की शुरुआत थी। लेकिन किताब ये भी बताती है कि कैसे सिस्टेमिक रेसिज्म, मतलब प्रणालीगत नस्लवाद और धोखाधड़ी से वो जमीन उनके हाथ से चली गई।
ओह
हाँ, और ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये आर्थिक स्थिरता, सम्मान, वो सब छिन गया। और इसकी छाया कहीं ना कहीं फ्लॉयड परिवार पर आगे भी पड़ी। जॉर्ज का जन्म तो नॉर्थ कैरोलिना में हुआ, पर वो पले बड़े ह्यूस्टन के 3rd वार्ड में, कूनी होम्स पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट में, जिसे लोग द ब्रिक्स कहते थे।
द ब्रिक्स, वहां का माहौल कैसा था, किताब क्या बताती है?
किताब दिखाती है कि वो जगह, मतलब, मिली जुली थी। एक तरफ तो मजबूत कम्युनिटी थी, संस्कृति थी, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा था, पर दूसरी तरफ गरीबी थी, स्कूलों में साधन कम थे और पुलिस की मौजूदगी बहुत ज्यादा थी। ये रोज की सच्चाई थी।
और उनकी माँ लार्सेनिया सिसी फ्लॉयड, उनका जिक्र कैसे आता है?
सिसी फ्लॉयड, वो तो जॉर्ज की दुनिया का केंद्र थी। किताब उन्हें एक बहुत मजबूत, बहुत प्यार करने वाली माँ के तौर पर दिखाती है। पिता की गैर मौजूदगी में उन्होंने ही बच्चों को पाला, जॉर्ज के लिए वो सब कुछ थी।
हाँ, और जॉर्ज का अपना स्वभाव, बचपन से ही लंबे चौड़े थे पर शांत, जेंटल जायंट कहते थे लोग।
बिल्कुल, दयालु दानव, वो अक्सर झगड़े सुलझाते थे, कमजोर का साथ देते थे, एक रक्षक की तरह।
किताब में एक छोटी सी बात है कि वो दीवार पर अपनी हाइट के निशान बनाते थे।
हाँ, वो निशान लेखकों के हिसाब से वो सिर्फ इंच टेप का खेल नहीं था, वो उनकी एक मासूम सी महत्वाकांक्षा थी। सपना था कि बड़े होकर माँ के लिए घर खरीदेंगे, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देंगे। लेकिन द ब्रिक्स का माहौल और सिस्टम की चुनौतियां,
वहीं दिक्कतें शुरू होती है। ये सपना पूरा करना आसान नहीं था। यहीं पर खेल उनकी जिंदगी में एक उम्मीद की तरह आता है। जैक येट्स हाई स्कूल में वो स्टार खिलाड़ी थे, फुटबॉल बास्केटबॉल दोनों में।
तो क्या ये 3rd वार्ड से बाहर निकलने का रास्ता बन सकता था?
उम्मीद तो यही थी, खेल उनका पैशन था, टैलेंट भी था। सोचा था स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलेगी, कॉलेज जाएंगे, माँ का सपना पूरा होगा। लेकिन यहाँ फिर सिस्टम आड़े आता है।
कैसे? किताब बताती है कि येट्स जैसे स्कूल जहाँ ज्यादातर अश्वेत बच्चे थे, वहाँ फंड्स की कमी थी, एकेडमिक सपोर्ट, वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाया जो जरूरी था।
मतलब टैलेंट था पर पढ़ाई में पीछे रह गए।
हाँ, और नतीजा ये हुआ कि इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद वो बड़े कॉलेजों की स्कॉलरशिप के लिए जो एकेडमिक जरूरतें थीं वो पूरी नहीं कर पाए। किताब इसे उनकी नाकामी से ज्यादा उस सिस्टम की नाकामी बताती है जिसने उन्हें बराबर मौका नहीं दिया।
ये तो बहुत निराशाजनक रहा होगा। कॉलेज जाने की कोशिशें भी फिर कामयाब नहीं हुई।
कोशिशें की, साउथ फ्लोरिडा कम्युनिटी कॉलेज गए, टेक्सास A&M किंग्सविल भी गए, पर बात बनी नहीं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का सपना टूट गया।
फिर ह्यूस्टन वापसी और वो हिप हॉप वाला दौर, बिग फ्लॉयड।
हाँ, सपना टूटने के बाद वो ह्यूस्टन लौट आए, 90 का दशक था, ह्यूस्टन हिप हॉप का गोल्डन टाइम चल रहा था। डीजे स्क्रू और उनका स्क्रूड अप क्लिक बहुत मशहूर था। जॉर्ज उसका हिस्सा बने, बिग फ्लॉयड नाम से जाने गए। उनकी आवाज कई मिक्स टेप्स में है, थोड़ी पहचान मिली पर
उससे गुजारा नहीं होता था।
बिल्कुल, यहीं से मुश्किलें और बढ़ीं। अच्छी स्टेबल नौकरी मिलना मुश्किल था, शायद पिछला कोई रिकॉर्ड या पते की दिक्कत। वजह कई थी, अफसरों की कमी उन्हें धीरे धीरे अनौपचारिक और कभी कभी गैर कानूनी कामों की तरफ धकेल रही थी।
छोटी मोटी गिरफ्तारियां भी हुई।
हाँ, ड्रग्स चोरी ऐसे मामलों में। ये वो दौर था जब अमेरिका का वॉर ऑन ड्रग्स चल रहा था और इसका सबसे बुरा असर अश्वेत और गरीब तबकों पर पड़ रहा था। जॉर्ज फ्लॉयड भी उस चपेट में आए।
और फिर 2007 की वो घटना, डकैती और 5 साल जेल, ये तो जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा।
निश्चित रूप से, किताब इसे उनके जीवन का सबसे अंधेरा दौर बताती है। ये शायद सालों की हताशा निराशा का नतीजा था, एक बहुत गलत फैसला। लेकिन दिलचस्प बात यह है,
क्या
जेल उनके लिए सिर्फ सजा नहीं बनी? लेखकों के मुताबिक वहां उन्हें वक्त मिला सोचने का, खुद को टटोलने का। उनका झुकाव धर्म की तरफ बढ़ा, उन्होंने पक्का इरादा किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेंगे।
और इसी इरादे से वो 2014 में मिनियापोलिस गए, एक नई शुरुआत की तलाश में।
बिल्कुल, वो ह्यूस्टन के उस माहौल से, उन यादों से, उस पैटर्न से दूर जाना चाहते थे। मिनियापोलिस जाना उनके लिए एक रीबर्थ जैसा था, एक पुनरुत्थान। वहां वो एक क्रिश्चियन वर्क प्रोग्राम से जुड़े।
इस प्रोग्राम का मकसद क्या था?
मकसद था लोगों को नशे और अपराध के जाल से निकालकर एक नई बेहतर जिंदगी देना।
तो मिनियापोलिस में जिंदगी कैसी रही? क्या उन्हें वो नई शुरुआत मिली?
काफी हद तक हाँ। किताब कहती है कि ये शायद उनके अडल्ट जीवन का सबसे स्थिर, सबसे पॉजिटिव दौर था। उन्होंने साल्वेशन आर्मी के हार्बर लाइट सेंटर में काम किया, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर। वहां लोग उन्हें पसंद करते थे, उनकी गर्म जोशी, मदद करने का स्वभाव।
उन्हें शांति का दूत भी कहा जाने लगा था।
हाँ, क्योंकि वो अक्सर लोगों के बीच सुलह कराते थे, युवाओं को समझाते थे, एक मेंटर की तरह। बाद में उन्होंने कोंगा लैटिन बिस्ट्रो नाम के रेस्तरां में बाउंसर का काम भी किया, चर्च से भी जुड़े रहे।
तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी पटरी पर आ रही है, फिर क्या हुआ? चुनौतियां वापस कैसे आ गईं?
कुछ पुरानी थी, कुछ नई। ओपियोइड की लत, जो शायद कभी दर्द की दवा से शुरू हुई होगी, वो अब भी एक मुद्दा थी। फिर 2018 में उनकी माँ सिसी का देहांत हो गया।
ओ, ये तो बहुत बड़ा सदमा रहा होगा।
जबरदस्त झटका था। किताब बताती है कि वो इस गम से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। ये उनके आखिरी सालों में एक लगातार मौजूद साये जैसा था।
और फिर कोविड महामारी।
हाँ, 2020 में कोविड आया और सब कुछ फिर बिखर गया। रेस्टोरेंट बंद हो गया, उनकी नौकरी चली गई, वो फिर से बेरोजगार थे। आर्थिक तंगी, माँ का गम, अकेलापन, वो बहुत दबाव में थे।
और इसी मुश्किल भरे माहौल में 25 मई 2020 की वो घटना हुई।
जी, उस दिन इन सारे दबावों के बीच उन्होंने कथित तौर पर कप फूड स्टोर से सिगरेट खरीदने के लिए एक नकली $20 बिल का इस्तेमाल किया। पुलिस आई और फिर वो हुआ जिसने दुनिया बदल दी।
ऑफिसर डेरेक चौविन का 9 मिनट 29 सेकंड तक उनकी गर्दन पर घुटना रखना, उनके आखिरी शब्द मामा और उनकी मौत। इस पूरी यात्रा को देखते हुए क्या किताब उनके किसी खास जीवन दर्शन या कोर वैल्यूज पर रोशनी डालती है? वो क्या बनना चाहते थे?
किताब दिखाती है कि उनके अंदर एक गहरी इच्छा थी शांति का आदमी बनने की, अच्छाई की ताकत बनने की। वो झगड़ों से बचते थे और उनमें रिडेम्पशन यानी मुक्ति में गहरा विश्वास था।
मुक्ति अपने लिए या दूसरों के लिए?
दोनों के लिए। वो मानते थे कि लोग बदल सकते हैं, गलतियों से सीखकर बेहतर बन सकते हैं। वो खुद भी यही कोशिश कर रहे थे।
और उनका वो कहना, मैं दुनिया को छूना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब समझे?
ये शायद उनकी एक चाहत थी प्रभाव डालने की, लोगों से जुड़ने की, दुनिया पर अपनी एक पॉजिटिव छाप छोड़ने की। उनका नजरिया हमेशा उम्मीद और निराशा के बीच झूलता रहा। एक तरफ परिवार का प्यार, कम्युनिटी का साथ, दूसरी तरफ सिस्टम का दबाव, नाइंसाफी। पर इन सब के बीच किताब दिखाती है कि उन्होंने इंसानी रिश्तों में उम्मीद में अपना यकीन बनाए रखने की कोशिश की, और इसमें ईसाई धर्म उनके लिए एक बड़ा सहारा था।
उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? क्या चीजें थी जो उन्हें आगे बढ़ाती थी?
सबसे बड़ी प्रेरणा तो उनकी माँ थी, सिसी। उन्हें प्राउड फील कराना, उनके त्याग को सार्थक करना, ये जॉर्ज के लिए बहुत जरूरी था। माँ की यादें उनके लिए एक मॉरल कंपास की तरह थी।
और
दूसरी बड़ी प्रेरणा थी उस चक्र को तोड़ना, गरीबी, नशा, जेल, इस चक्र से बाहर निकलना। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। मिनियापोलिस जाना इसी कोशिश का एक बड़ा कदम था। और तीसरी, वो एक अच्छे पिता बनना चाहते थे, अपनी बेटी जियाना के लिए एक रोल मॉडल, एक प्रोवाइडर।
उनकी जीवन में इतने उतार चढ़ाव रहे, अगर तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हो जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
किताब के हिसाब से पहला तो शायद वही हाई स्कूल वाला मामला होगा, बड़ी कॉलेज स्कॉलरशिप न मिल पाना। जैसा हमने कहा, यह सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं थी, ये गरीबी से बाहर निकलने का सबसे पक्का रास्ता था जो बंद हो गया।
हाँ, खेल का सपना टूट गया
और उन्हें वापस थर्ड वार्ड लौटना पड़ा, जहां मौके कम थे। किताब इशारा करती है कि यहीं से वो धीरे धीरे स्ट्रीट कल्चर और फिर कानून के शिकंजे में आने लगे।
ये वाकई एक बड़ा मोड़ था। दूसरा?
दूसरा बिना शक 2007 की वो डकैती और 5 साल की जेल। वो उनके जीवन का सबसे निचला पॉइंट था, सालों की हताशा का, गलत फैसलों का नतीजा। उसने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। लेकिन
वहीं से बदलाव की सोच भी आई।
हाँ, जेल में उन्हें वक्त मिला आत्ममंथन का। किताब बताती है कि यहीं उन्होंने अपने किए पर गहरा अफसोस जताया, अपने विश्वास को टटोला और ठान लिया कि बाहर निकलकर वो एक अलग इंसान बनेंगे। ये सजा एक तरह से उन्हें मिनियापोलिस को जाने के लिए तैयार कर रही थी, उस रीबर्थ के लिए।
और तीसरा मोड़ फिर मिनियापोलिस जाना ही हुआ?
जी हाँ, 2014 में मिनियापोलिस जाना, ये तीसरा और शायद सबसे पॉजिटिव मोड़ था। ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये अतीत से, उस माहौल से, उस चक्र से बाहर निकलने की एक सचेत कोशिश थी, उम्मीद की, खुद को बचाने की एक कोशिश।
और कुछ हद तक कामयाब भी हुई वो कोशिश, जैसा हमने देखा। नया शहर, नया समुदाय, जिंदगी में एक मकसद, खुद को शांति के आदमी के तौर पर फिर से देखने का मौका मिला। कई साल उन्होंने वहां ठीक ठाक पॉजिटिव जिंदगी बिताई। ये दिखाता है कि बदलाव हो सकता था अगर हालात थोड़े और साथ देते। जॉर्ज फ्लॉयड की इस पूरी कहानी से, उनकी जिंदगी के इन अनुभवों से आज हम क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसे सबक हैं जो हम सबके लिए मायने रखते हैं?
कई हैं, शायद सबसे पहला तो यही कि किसी भी इंसान की डिग्निटी, उसका मूल्य उसकी आर्थिक हालत या उसके पास्ट रिकॉर्ड से तय नहीं होता। हर जिंदगी की अपनी कीमत है। दूसरा, मुश्किल वक्त में कम्युनिटी और रिश्तों की ताकत। जॉर्ज की जिंदगी में जब भी अच्छा दौर आया, उसमें लोगों का, रिश्तों का हाथ था।
ये रिश्ते ही संभालते हैं।
बिल्कुल। और ये भी कि सुधार या बदलाव वो कोई सीधी लकीर नहीं है, वो एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इंसान गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। किताब दिखाती है जॉर्ज ने बार बार कोशिश की, शायद पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, पर उन कोशिशों की भी अपनी अहमियत है।
उनकी कहानी ये भी याद दिलाती है कि दयालुता के छोटे छोटे काम भी मायने रखते हैं। किसी की मदद कर देना, किसी को सलाह दे देना।
सही कहा। और आज के समय में यह कहानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये रेसिज्म, आर्थिक असमानता, एजुकेशन सिस्टम की कमियां, जस्टिस सिस्टम के बायस, इन बड़ी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लगने वाली बातों को एक इंसान की जिंदगी के जरिए दिखाती है। ये बताती है कि ये सिस्टम सिर्फ शब्द नहीं है, ये लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं।
बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहां तक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और कहां सिस्टम को बदलने की जरूरत है। शायद दोनों साथ चलते हैं। और ये याद दिलाती है कि हर इंसान कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी, ताकत भी, कमजोरी भी। किसी को सिर्फ एक घटना से जज नहीं किया जा सकता। ये कहानी सहानुभूति जगाती है।
अगर हम इस पूरी बातचीत से तीन खास बातें निकालें, तो पहली एक इमोशनल इनसाइट होगी, जॉर्ज और उनकी माँ सिसी का वो गहरा रिश्ता। उनके आखिरी शब्द मामा सिर्फ एक पुकार नहीं थे, वो उस प्यार का, उस सहारे का प्रतीक थे जिसने उनकी पूरी जिंदगी को थामे रखा। यह हमें याद दिलाता है कि हर खबर के पीछे एक इंसान है जिसके अपने दर्द हैं, अपने रिश्ते हैं। ये सिस्टमिक वायलेंस की मानवीय कीमत दिखाता है।
दूसरी एक इंटेलेक्चुअल इंसाइट ये हो सकती है कि जॉर्ज फ्लॉयड की जिंदगी वो व्यक्तिगत सपनों और सिस्टमिक रुकावटों के बीच एक लगातार टकराव थी। उनमें आगे बढ़ने की चाह थी, पर नस्लवाद, शिक्षा में कमी, कानून की सख्ती, ये बार बार आड़े आए। किताब का तर्क है कि उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि सालों से चली आ रही इन नाइंसाफियों का एक दुखद पर लॉजिकल नतीजा थी। ये दिखाता है कि सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, उन ढांचों को भी बदलना होगा जो मौके छीनते हैं।
और तीसरी एक यूनिवर्सल इंसाइट, कोई भी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती से कहीं ज्यादा होता है। हर जीवन का अपना आंतरिक मूल्य है, समाज चाहे जो भी सोचे। गरीबी, भेदभाव, निजी संघर्ष, इन सब के बावजूद जॉर्ज फ्लॉयड ने जिस तरह दया, गरिमा और दूसरों के लिए सम्मान बनाए रखने की कोशिश की, वो दिखाता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी दुनियावी उपलब्धि कुछ भी न हो, अपने आसपास की दुनिया में कुछ अच्छा जोड़ सकता है। उनकी कहानी हमें स्टीरियोटाइप से आगे देखने की चुनौती देती है, पूरे इंसान को देखने की।
जब हम जॉर्ज फ्लॉयड जैसे एक व्यक्ति की पूरी कहानी जानते हैं, उनके जीवन के हर पहलू, हर संघर्ष और हर सपने को समझते हैं, तो क्या ये हमें उन अनगिनत लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करता जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाती? और क्या ये हमें इस बात पर और गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित नहीं करता कि कैसे हमारे आसपास के सिस्टम और संरचनाएं हर एक व्यक्ति के जीवन को जाने अनजाने आकार देती हैं? फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।